अध्याय 15 प्रक्षेपी विधि प्रोजेक्टिव मेथड। अर्थ: प्रक्षेपी विधि का जन्म नैदानिक परिस्थितियों में हुआ। इस विधि में व्यक्ति के सामने एक असंरचित उद्दीपन रखा जाता है और उसे यह बतलाने को कहा जाता है कि उसने यह क्या देख रहा है, या कभी कभी उसे देखकर एक छोटी कहानी आदि भी लिखने को कहा जाता है। असंरचित उद्दीपन वह उद्दीपन होता है जिसका अर्थ प्रायः प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से लगाता है, क्योंकि इसमें कुछ सुस्पष्ट वस्तु नहीं होता है। प्रक्षेपी परीक्षण की पूर्व कल्पना यह होता है कि जब व्यक्ति इस परीक्षण के असंरचित उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है तो वह अचेतन रूप से अपने भावों, संवेगों एवं मानसिक संघर्षों की भी अभिव्यक्ति कर पाता है। यहाँ अचेतन शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि वह अपनी अनुक्रियाओं के माध्यम से भावों, संवेगों एवं मानसिक संघर्षों की अभिव्यक्ति कर रहा है। हरमन रोशाक द्वारा निर्मित स्याही धब्बा परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण का उत्तम उदाहरण है। पैराग्राफ चेंज। प्रक्षेपी परीक्षण का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रक्षेपी परीक्षण के कई प्रकार हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसके विभिन्न प्रकार बतलाए हैं। फ्रैंक 1939 ने प्रक्षेपी परीक्षणों के उद्दीपनों के प्रति दिए गए अनुक्रियाओं के स्वरूप के आधार पर प्रक्षेपी परीक्षण को निम्नांकित 5 भागों में बांटा है: 1 संघटक कॉन्स्टिट्यूटिव, 2 रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव, 3 व्याख्यात्मक इंटरप्रेटिव टेटिव, 4 अप्रवर्तक रिफ्रैक्टिव, 5 विरेचक कैथेरेटिक। इन सब का वर्णन निम्नांकित है: 1 संघटक। इस श्रेणी में उन सभी तरह के प्रक्षेपी परीक्षणों को रखा जाता है जिसके सामग्रियों या उद्दीपन पर कोई विशेष संरचना को अपनी ओर से स्वतंत्र होकर व्यक्ति बैठाता है या उस पर थोपता है। फिंगर पेंटिंग परीक्षण एवं आरेखन पूर्ति परीक्षण इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण हैं। जुबिन एरोन एवं शूमर 1965 एवं पिट्रोस्की ने रोशार्क परीक्षण को भी इस श्रेणी में रखा है। 2 रचनात्मक। इस श्रेणी में उन सभी प्रक्षेपी परीक्षणों को रखा जाता है जिनमें परीक्षार्थी को परीक्षक एक निर्दिष्ट वस्तु की रचना करने के लिए कहता है। जैसे परीक्षार्थी को किसी वृक्ष, पुरुष या महिला का चित्र बनाने के लिए कहा जा सकता है। संगठक श्रेणी में आने वाले परीक्षणों एवं रचनात्मक श्रेणी में आने वाले परीक्षणों में मूल अंतर यही है कि पहले तरह के परीक्षणों में परीक्षार्थी को अपने मन से कोई चित्र बनाना होता है और शोधकर्ता या परीक्षक की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं होता है, जबकि दूसरे तरह के परीक्षणों में शोधकर्ता एक दिशा निर्देश देता है। 3 व्याख्यात्मक। इस श्रेणी में उन सभी तरह के प्रक्षेपी परीक्षणों को रखा जाता है जिसमें परीक्षार्थी को अपनी ओर से परीक्षण के उद्दीपन के प्रति विस्तृत रूप से अर्थ जोड़ना होता है। विषय आत्मबोधन परीक्षण तथा शब्द साहचर्य परीक्षण इस श्रेणी के परीक्षण के अच्छे उदाहरण हैं। 4 अप्रवर्तक। इस श्रेणी में उन सभी तरह के प्रक्षेपी परीक्षणों को रखा जाता है जिनमें परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व को पेंटिंग, आरेखन एवं हस्तलेखन आदि के माध्यम से व्यक्त करता है। लिपि विज्ञान को अप्रवर्तक श्रेणी का एक अच्छा उदाहरण माना गया है। 5 विरेचक कैथार्टिक। इस श्रेणी में इन सभी तरह के प्रक्षेपी परीक्षणों को रखा जाता है जिसके द्वारा परीक्षार्थी कुछ हस्तचालित कार्य द्वारा अपने इच्छाओं, संघर्षों आदि की अभिव्यक्ति करता है। खेल इस श्रेणी का एक उत्तम उदाहरण है। फ्रैंक द्वारा प्रतिपादित इस वर्गीकरण पद्धति का दोष यह बतलाया गया है कि इनकी श्रेणियां आपस में इतनी अधिक परस्पराच्छादित हैं कि उन्हें स्वतंत्र रूप से समझना तथा उनसे अर्थ निकालना संभव नहीं है। फलस्वरूप पाठक के मन में संभ्रांति उत्पन्न होती है और इस वर्गीकरण पद्धति द्वारा समस्या का समाधान कम तथा उसमें उलझन अधिक उत्पन्न होता है। इस संभ्रांति को दूर करने के ख्याल से लिंडसे ने प्रक्षेपी परीक्षण का एक दूसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया है जो तुलनात्मक रूप से अधिक वैज्ञानिक, अर्थपूर्ण एवं लोकप्रिय है। लिंडसे ने प्रक्षेपी परीक्षण को निम्नांकित 5 भाग श्रेणियों में विभक्त किया है: 1 साहचर्य प्रविधि, 2 रचना प्रविधि, 3 संपूर्ण प्रविधि, 4 अभिव्यंजना प्रविधि, 5 चयन प्रविधि। इन प्रविधियों का वर्णन निम्नांकित है: 1 साहचर्य प्रविधि। साहचर्य प्रविधि में उन सभी प्रक्षेपी परीक्षणों को रखा जाता है जिसमें उद्दीपन सामग्री को देखने या सुनने के बाद मन में उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला सबसे पहला साहचर्य के बारे में प्रयोज्य को बतलाना होता है। रोशार्क परीक्षण हॉजमैन स्याही धब्बा परीक्षण तथा शब्द साचर्य परीक्षण इसके कुछ ज्वलंत उदाहरण हैं। इन सभी परीक्षणों का स्वरूप ऐसा होता है कि प्रयोज्यों को दिए गए उद्दीपन को देखने या सुनने के बाद उसे उन साचर्यों के बारे में बतलाना होता है जो उसके मन में उत्पन्न हुए थे। पैराग्राफ चेंज दो, रचना प्रविधि। इस श्रेणी में उन प्रक्षेपी परीक्षणों को रखा जाता है जिसमें प्रयोज्य को दिए गए असंरचित उद्दीपनों जो प्रायः एक अस्पष्ट तस्वीर के रूप में होते हैं को देखकर एक कहानी की रचना करनी होती है। विषय आत्मबोधन परीक्षण, थीमैटिक एप्रिसेप्शन, एप्रिसेप्शन टेस्ट, बाल आत्मबोधन परीक्षण, रोजनविक तस्वीर कुंठा अध्ययन, ब्लैकी पिक्चर्स, पिकफोर्ड प्रक्षेपी पिक्चर इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जिनके आधार पर प्रयोज्य को कहानी लिखना होता है। पैराग्राफ चेंज तीन, संपूर्ण प्रविधि। इस श्रेणी में उन सभी प्रक्षेपी परीक्षण को रखा जाता है जिसमें एकांश के रूप में अधूरे वाक्यों का निर्माण किया जाता है और प्रयोज्य को उनसे अपनी ओर से अर्थपूर्ण ढंग से पूरा करना होता है। इस तरह के एकांश के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अ, मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे डैश डैश डैश। ब, जिंदगी में मेरी आकांक्षा है कि डैश। स, मैं प्रायः उस समय घबरा जाता हूँ जब डैश। परीक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों को विश्लेषण करने के बाद उनके व्यक्तित्व के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। चार, अभिव्यंजन प्रविधि। इस श्रेणी में उन सभी प्रक्षेपी परीक्षणों को रखा जाता है जिसमें परीक्षार्थी को कुछ हस्तचालित कार्य के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के शील गुणों को अभिव्यक्ति करनी होती है। खेल, पेंटिंग, भूमिका निर्वाह, आरेखन आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। अभिव्यंजना प्रविधि का एक विशेष गुण यह होता है कि इसमें शोधकर्ता या परीक्षक इस बात पर अधिक ध्यान देता है कि वह दिए गए वस्तुओं या सामग्रियों को कैसे उलट पुलट कर या हाथ से इधर उधर करता है। उदाहरण स्वरूप, किसी बालक को कुछ गुड़िया ढेलने के लिए दे दिया जा सकता है और परीक्षण या शोधकर्ता इस बात पर अधिक ध्यान देगा कि बालक उस गुड़िया को खेल के दौरान किस ढंग से इधर उधर करता है। पैराग्राफ चेंज, अभिव्यंजना प्रविधि रचना प्रविधि से बहुत कुछ समान होते हुए भी भिन्न है। अभिव्यंजना प्रविधि में परीक्षक के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि परीक्षार्थी किसी ढंग से दिए गए वस्तुओं को हस्तचालित करता है, परंतु रचना परीक्षण में परीक्षक के लिए वस्तुओं या सामग्रियों का हस्तचालित करने का ढंग कोई अहमियत नहीं रखता है बल्कि उसका अंतिम परिणाम अहमियत रखता है, क्योंकि इसके विश्लेषण करने पर उसे परीक्षार्थी के व्यक्तित्व के बारे में अंदाज लग पाता है। पांच, चयन प्रविधि। इस प्रविधि के परीक्षण में परीक्षार्थियों को कुछ ऐसे एकांशों या तस्वीरों को दिया जाता है जिसके माध्यम से शील गुणों की विभिन्न मात्राओं का पता चलता है और वह इन एकांशों या तस्वीरों में कुछ उपयुक्त एवं संगत एकांश या तस्वीर को चुन लेता है। कभी कभी परीक्षार्थी को अपने पसंद की अभिव्यक्ति करने के दौरान उन्हें कोटिबद्ध भी करना होता है। शायद यही कारण है कि इन प्रविधि को क्रमिक प्रविधि भी कहा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि लिंडसे द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वह अधिक वैज्ञानिक एवं अर्थपूर्ण है तथा उसकी लोकप्रियता फ्रैंक 1939 द्वारा किए गए वर्गीकरण पद्धति से अधिक है। पैराग्राफ चेंज, प्रक्षेपी परीक्षण का शोध उपकरण के रूप में मूल्यांकन, इवेलुएशन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक एज रिसर्च टूल। प्रक्षेपी परीक्षण को मनोवैज्ञानिक शोध में मापन का सबसे अधिक विवादास्पद उपकरण माना गया है। यद्यपि इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक शोधों में काफ़ी हुआ है, फिर भी इसकी काफ़ी आलोचनाएं की गई हैं। इस परीक्षण की उन आलोचनात्मक का वर्णन करने के पहले उसकी कुछ शोध उपयोगिताओं जिनके द्वारा इस परीक्षण के गुण का पता चलता है वर्णन आवश्यक है। ऐसे शोध उपयोगिताओं में निम्नांकित प्रमुख हैं। एक, प्रक्षेपी परीक्षण का प्रयोग नैदानिक शोध तथा अन्य शोधों में आसानी से किया जाता है क्योंकि इसका क्रियान्वयन सरल एवं सुगम होता है। टेटेनबाउम 1975 के अनुसार प्रक्षेपी परीक्षण के क्रियान्वयन में सरलता एवं सुगमता का गुण होने से उसकी शोध उपयोगिता काफ़ी बढ़ी है। दो, प्रक्षेपी परीक्षण में परीक्षार्थी द्वारा दिया गया उत्तर मौलिक एवं स्वाभाविक होता है, क्योंकि इसमें मनगढ़ंत उत्तर देने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की जाती है। इसका कारण यह है कि परीक्षार्थी यह नहीं समझ पाता है कि उसके द्वारा दिए गए उत्तरों से उसके व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ पता चल सकता है। टेटनबॉम 1975 के अनुसार चूंकि प्रक्षेपी परीक्षण में उत्तरों का मौलिकता एवं स्वाभाविकता बरकरार होती है, इसलिए उसकी शोध उपयोगिता काफ़ी होती है। पैराग्राफ चेंज, प्रक्षेपी परीक्षण इन शोध उपयोगिताओं के बावजूद उसकी कुछ परिसीमाएं हैं जो निम्नांकित हैं। पैराग्राफ चेंज, एक, वस्तुनिष्ठता, प्रक्षेपी परीक्षण में प्रश्नावली या अन्य आत्मप्रवृत्ति वेदित इन्वेंटरी की तुलना में वस्तुनिष्ठता कम होती है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य प्रेक्षकों के बीच आपस में सहमति से होता है। आलोचकों का मत है कि प्रक्षेपी परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या तथा उसके प्राप्त लेखन में प्रेक्षकों के बीच इतनी भिन्नता होती है कि इससे कोई यथार्थ निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। पैराग्राफ चेंज, दो, विश्वसनीयता, प्रक्षेपी परीक्षणों की विश्वसनीयता कम होती है। इसके दो कारण बतलाए गए हैं। पहला, किसी भी प्रक्षेपी परीक्षण में प्राप्तांक का लेखन तथा आंकड़ों की व्याख्या करने का कोई एक समान मानक नहीं है, फलतः इसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। दूसरा, इस तरह के परीक्षणों का प्रयोग यदि वही प्रयोज्यों पर दोबारा किया जाए तो उसके परिणाम एक समान न होकर भिन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रक्षेपी परीक्षण में परीक्षण पुनः परीक्षण स्थिरता नहीं होती है। पैराग्राफ चेंज, तीन, वैधता, अधिकतर प्रक्षेपी परीक्षण ऐसे हैं जिनकी वैधता संतोषजनक नहीं है। इसका प्रधान कारण यह है कि इन परीक्षणों की वैधता ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ कसौटी का अभाव रहा है। चार, परिस्थिति जन्य चर, कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे हेरॉन, क्लाइव एवं रिचर्ड ने अपने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बतलाया है कि कुछ विशेष परिस्थिति जन्य चरों जैसे परीक्षक का शारीरिक डील डॉल, परीक्षक द्वारा किसी खास तरह की अनुक्रिया पर बल डाला जाना एवं मानक निर्देश में परिवर्तन आदि कुछ ऐसे चर हैं जिनका प्रक्षेपी परीक्षणों पर हमेशा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पैराग्राफ चेंज, इन सब कारकों के अलावा प्रक्षेपी परीक्षण द्वारा किए गए विभिन्न तरह के शोधों एवं प्रयोगों की समीक्षा आइजेंक ने की है और उन्होंने प्रक्षेपी परीक्षण का एक यथार्थ शोध मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। इन्होंने प्रक्षेपी परीक्षण को एक मनोवैज्ञानिक शोध के रूप में मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित तथ्यों को उजागर किया है। पैराग्राफ चेंज, एक, प्रक्षेपी परीक्षण कोई संगत अर्थपूर्ण एवं परीक्षण योग्य सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है, अतः इसे एक वैज्ञानिक शोध उपकरण नहीं माना जा सकता है। दो, प्रक्षेपी परीक्षण के सूचकांकों एवं व्यक्ति के विभिन्न तरह के शील गुणों, आदतों आदि में कोई सहसंबंध नहीं होता पाया गया है। तीन, इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है कि प्रक्षेपी परीक्षण द्वारा पहचान किए गए प्रेरकों, संघर्षों, आवश्यकताओं का अर्थ मनोचिकित्सकों एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा व्याख्या करने के बाद एक समान होंगे। चार, बहुत सारे ऐसे प्रयोगात्मक सबूत प्राप्त हैं जिनसे यह पता चलता है कि प्रक्षेपी परीक्षणों के प्रयोग प्रणाली दोषपूर्ण एवं अवैज्ञानिक डिजाइन पर आधारित हैं तथा उनमें त्रुटियों की भरमार है। पाँच, प्रक्षेपी परीक्षण में जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता या असफलता के बारे में पूर्वानुमान करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। पैराग्राफ चेंज, स्पष्ट हुआ कि प्रक्षेपी परीक्षण को एक शोध उपकरण के रूप में एक अनुकूल एवं उपयुक्त उपकरण नहीं समझा गया है। फिर भी इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक शोधों में उसकी सरलता एवं आसानी से प्राप्यता के कारण होता आया है और हो भी रहा है।